चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंशनसहावम् वोच्छामि नियमसारम् केवलिसुतकेवलीभणितम्। यह नियमसार शास्त्र है, उसकी पहली गाथा जो है वो गाथा से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी दोबारा गाथा पढ़ने की तो वैसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो गुजराती है वो हम जरूर पढ़ेंगे। नमी ने अनंतोत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर ने कहु नियम सार हूं केवली श्रुत केवली परिकथित ने। देखो क्या कहते हैं, मैं नमस्कार करता हूं किसको, तो जिनेंद्र भगवान, जो जिन वीर यानी महावीर जो है वो कैसे हैं कि अनंत और उत्कृष्ट ऐसे दर्शन और ज्ञान में जो है, ऐसे जिनेंद्र भगवान यानी महावीर को मैं नमस्कार करता हूं और मैं नियमसार कहूंगा। कैसा कि जो पहले केवली और श्रुत केवलियों ने कहा हुआ है उसको ही परिकथित ने यानी उसको ही मैं आपको कहूंगा। अब अनुवाद देखते हैं, अनंतवर ज्ञान दर्शन स्वभावम। अरे ये संस्कृत इन्होंने नहीं लिखा है क्या? क्या पहले आ गया? नहीं लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, अभी क्या करें। ठीक है ठीक है, संस्कृत में जो नहीं लिखा है लेकिन उसका अर्थ जरूर है। चलो कि अनंत ने उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन जेमनो स्वभाव छे एवा केवल ज्ञानी अने केवल दर्शनी जीनम वीरम याने जीन वीर ने नत्वा। तमे લઈ આવ્યા છો? અનંત અને ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન દર્શન જેમનો સ્વભાવ છે એવા કેવળ જ્ઞાની અને કેવળ દર્શની જિનવીરને નત્વા એટલે નમીને કેવલી શ્રુત કેવલી ભણિતમ। કેવળી અને શ્રુત કેવળીઓએ કહેલું નિયમસાર વક્ષામી અર્થાત હું કહીશ। ટીકા, અહીં જિનમ નત્વા એ ગાથાથી શાસ્ત્રના આદિમાં અસાધારણ મંગળ કહ્યું છે। એ મંગલાચરણ મેં ઉન્હોને असाधारण ऐसा मंगलचरण किया है ऐसा यहाँ बता रहे हैं। नत्वा इत्यादि पदार्थोनु तात्पर्य केवम इत्यादि पदोनु तात्पर्य केवामा आवे छे। अनेक जन्म रूप अटवी ने प्राप्त करावाना हेतु भूत समस्त मोह राग द्वेषादिक ने जे जीते छे ते जिन छे। अब ये जिन किसको कहना या उसका डेफिनेशन यानी उसकी व्याख्या हमें बताते हैं। परिभाषा ये बता रहे हैं कि अनेक जन्म रूप अटवी, अटवी का अर्थ क्या है हा? किसने बताया? हाँ, अटवी यानी जंगल, वन, घन, मतलब क्या बोलते हैं अरण्य जिसको कहते हैं। तो वो कैसा होता है अरण्य कि उसमें बार बार नया 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 उसमें पेड़ उगते ही जाते हैं। तो वैसे जन्म रूप क्या है ये? ये जीव को जब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता है तब बारंबार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण ऐसा यह उसका प्रोसेस चालू ही रहता है। तो क्या कह रहे हैं? अनेक जन्म रूप अटवी ने प्राप्त करावाना हेतुभूत, यानी इस जीव को जो बार बार जन्म मरण जो हो रहा है उसका हेतु यानी उसका कारण क्या है? तो कहते हैं मोह राग द्वेषादिक ने। तो मोह राग और द्वेष और आदिक में क्या लेना कि बाकी के जो कषाय है नौ कषाय। तो आदिक ने जे जीते छे ते जिन छे। वीर एटले विक्रांत, जे शोलापुर ते आवे छे ना ते विक्रांत एटले जे वीर छे एने एने काल थी तमे वीर केवा वांधो नथी शू कयु ए कहे छे के जे जिन छे एने वीर एटले विक्रांत एटले पराक्रमी। वीरता फोरवे, शौर्य फोरवे, विक्रम यानी पराक्रम फोरवे, कर्म शत्रुओं पर विजय मेळवे ते वीर छे। देखो पहले में पहले इस बात को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझना चाहिए। यहाँ कोई शत्रु फत्रु कोई नहीं है, यहाँ कोई हिंसा वगैरह कुछ नहीं, वहाँ कोई तलवार लेके लड़ाई बड़ाई करना कुछ नहीं है। लेकिन यह जो कर्म जो है उन कर्मों को ही शत्रु ऐसा कहा गया है। वास्तव में कर्म भी शत्रु नहीं है। क्यों? इस जीव के जो मोह राग द्वेष रूप जो परिणाम है जिसके निमित्त से वो कर्म में जो कुछ होता है, कर्म में जो कुछ हो रहा है वो कर्म के कारण कर्म के स्वक्षेत्र में स्वकाल स्वभाव स्व इसमें हो रहा है स्वद्रव्य में। लेकिन यहां जीव के ऐसे खोटे मोह राग द्वेष के परिणाम जो होते हैं तो वह जीव के जो राग द्वेष के परिणाम है वो कैसे नष्ट हो जाए? तो जब यह जीव अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाता है तब ये परिणाम उत्पन्न ही नहीं होते। तो उसने मोह राग द्वेष को जीता है ऐसा कहने में आता है। और जब वो मोह राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते तो नया बंध भी नहीं होता और पुराने जो उसके कर्म जो थे साथ में सत्ता में वह भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि उन कर्म शत्रुओं पर विजय मेळवे, ये सारा निमित्त का कथन है, औपचारिक कथन है। इस बात को हमें ख्याल में रहना चाहिए। और ये क्या है, जीव को जब तक इसने कुछ किया है कुछ नहीं किया ऐसा जब तक नहीं बताते ना तो उसकी महत्ता भी नहीं आती है। और वास्तव में वैसे कहने में कोई दोष है नहीं, कहने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा माने कि कर्म शत्रुओं पर हम जय पा सकते हैं या कर्म शत्रु हमको तकलीफ देते हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। ऐसा हम मानेंगे तो मान्यता खोटी है। तो क्या कहते हैं हाँ फोरवे मंजे गाजों ने मनते ना शौर्य गाजों ने वीरता फोरवे यानी पराक्रम एग्जिबिट करता है जिसको हम बोलते हैं ना प्रकट करना है। पूर्वे एटले प्रकट कर रहे हैं गाजों ने हिरण्य मैत्री मगाजु मैत्री एवा वीर ने के जे श्री वर्धमान श्री सन्मतिनाथ श्री अतिवीर अने श्री महावीर ए नामों थी युक्त छे जे परमेश्वर छे महादेवाधि देव छे छेला तीर्थनाथ छे जे त्रण भुवन ना सचराचर द्रव्य गुण पर्याय थी कहेवामां आवता समय ने एटले समस्त द्रव्य ने समय एटले टाइम नी बात नथी हो समय कहता द्रव्य होता है और समय सार कहते अपना आत्मा होता है जाणवा देखवामां समर्थ एवा सकल विमल एटले सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान दर्शन थी संयुक्त छे तेने प्रणमी ने कहूं छूं शू कहूं छूं नियम सार कहूं छूं नियम शब्द तो शब्द प्रथम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र माटे छे यानी नियम का अर्थ क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही यहां नियम कहने में आया है नियम सार एटले नियम नो सार एम कहता शुद्ध रत्नत्रय नो स्वरूप कहूं छे केवू छे ते केवड़ियो अने श्रुत केवड़ीए कहेलू छे केवड़ियो ते सकल प्रत्यक्ष ज्ञानना धरनारा अने श्रुत केवड़ियो ते सकल द्रव्य श्रुतना धरनारा एवा केवड़ियो अने श्रुत केवड़ीए श्रुत केवड़ीओए कहेलू सकल भव्य समूह ने हितकर नियमसार नामनु परमागम हूँ कहूँ छू आम विशिष्ट इष्ट देवताना स्तवन पछी सूत्रकार पूर्वाचार्य श्री कुंदकुंदाचार्य देव गुरुए प्रतिज्ञा करी आ प्रमाणे सर्व पदार्थों तात्पर्य कहेवामां आव्युं सर्व पदों हवे पहली गाथानी टीका पूर्ण करता टीकाकार मुनिराज श्री पद्म प्रभ मलधारी देव श्लोक कहे छे
अभी जो हमने टीका पढ़ी है वो पद्म प्रभ मलधारी देव ने जो संस्कृत में लिखी थी उसका ये ट्रांसलेशन गुजराती पढ़ा इसके ऊपर का प्रवचन बाद में आएगा पहले ये टीका लिखते हैं श्लोक लिखते हैं और फिर स्वामी जी ने जो प्रवचन किए थे उसको बाद में हम पढ़ेंगे इसके पश्चात
मालिनी
जयति जगति वीर शुद्ध भाव तमारा त्रिभुवन जन पूज्य पूर्ण बोध एक राज्य नत दिविज समाज प्रास्त जन्म त्रुबीज समवश्रुति निवास केवल श्रीनिवास
श्लोकार्थ शुद्ध भाव वड़े मारनो एटले कामनो जेने नाश कर्यो छे त्रण भुवन ना जनों ने जे पूज्य छे पूर्ण ज्ञान जेनु एक राज्य छे देवोनो समाज जेने नमे छे जन्म वृक्षनु बीज जेने नष्ट कर्यू छे समोसरण मा जेनो निवास छे अने केवल श्री एटले केवल ज्ञान दर्शन रूपी लक्ष्मी जेना मा वसे छे ते वीर जगतमा जयवंत वर्ते छे गाथार्थ जुओ गाथामा केवली सुद केवली भणिदम एम स्पष्ट आयवू छे के आ नियमसार केवली अने श्रुत केवलीओए कहेलू छे समयसारमा सुय केवली भणियम श्रुत केवलीए कहेलू एम पाठ छे ત્યાં કેવડીએ એટલે કેવડીએ કહેલું એમ સ્પષ્ટ ચોખ્ખું નથી પણ અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે એની ટીકામાં સ્પષ્ટ કરી નાખ્યું છે કે આ સમયસાર સર્વજ્ઞથી પ્રણીત અને શ્રુત કેવડી ગણધરોએ કહેલ છે ત્યાં સમયસારમાં પદ્યની રચનામાં શ્રુત કેવડી શબ્દ જ આવવાનો હતો પણ અંદર આશય તો આ જ હતો કે તે કેવડી અને શ્રુત કેવડીએ કહેલું છે અહીં નિયમસાર માં સ્પષ્ટ વાત છે ને? હા હા, આ નિયમસાર કેવળી પરમાત્માએ અને 14 પૂર્વ તથા 12 અંગના ધરનારા એવા શ્રુત કેવળીએ કહેલું છે. ક્યા બાત આઈ દેવેન્દ્રભાઈ? દેખો ક્યાં લિખા હૈ, 14 પૂર્વ તથા 12 અંગના ધરનારા એવા શ્રુત કેવળીઓએ કહેલું છે. ઓર વહા હમને દેખા તો આચાર્યો કી પરંપરા સે આઈ હુઈ બાત દોનો, અને તે હું કહીશ એમ કહે છે. હવે અન્વયાર્થ, અનંત અને ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન દર્શન જેમનો સ્વભાવ છે એવા કેવળ જ્ઞાની અને કેવળ દર્શની જિનવીરને નમીને જુઓ. સમયસારમાં સિદ્ધ ભગવંતોને વંદન કર્યું છે, પણ અહીં આ શાસ્ત્રમાં તો મોક્ષ માર્ગ કહેવો છે તેથી વર્તમાન શાસન નાયક એવા શ્રી વીર ભગવાનને નમસ્કાર કર્યો છે. આહાહા, જેને ભવના ભાવને જીત્યા છે અર્થાત ભવનો અભાવ કર્યો છે એવા શ્રી જિનવીરને નમીને કેવલી સુદ કેવલી ભણિદમ કેવળી અને શ્રુત કેવળીઓએ કહેલું નિયમસાર હું કહીશ. જુઓ અહીં કેવળી અને શ્રુત કેવળી એમ બે શબ્દો જુદા ચોખ્ખા છે. આહાહા, કેવળી પરમાત્માએ અને શ્રુત કેવળીઓએ જે મોક્ષનો માર્ગ નિયમસાર કહ્યો છે તે હું આ પરમાગમમાં કહીશ એમ કહે છે. વખ્યામી છે ને, મતલબ કે હું કહીશ. આહાહા, પણ કહેવું પણ કહેલું છે તે કહીશ, મારું એટલે મારા ઘરનું કાંઈ કહીશ નહીં. કેવળીને મુનિવરો શ્રુતધરોએ જે કહ્યું છે તે કહીશ એમ કહે છે. બંને છે ને ગાથા, એક ટીકા ઉપરનું પ્રવચન. અહીં જિનમનત્વા એ ગાથાથી શાસ્ત્રના આદિમાં અસાધારણ મંગળ કહ્યું છે. શું કીધું? નમી ઉણ જિણમ ગાથામાં પેલા શબ્દો છે ને, જિનને નમીને એટલે શું? એટલે કે પરમ વિતરાગ ભાવને ભગવાન વિતરાગ દેવને નમસ્કાર. આહાહા, જેમને પૂર્ણ વિતરાગતા પ્રગટી છે એવા શ્રી જિનને નમસ્કાર. આહા, પહેલો જ જિન શબ્દ લીધો છે. વસ્તુ સ્વરૂપે તો આત્મા જિન સ્વરૂપ જિન જ છે. વસ્તુ સ્વરૂપે એટલે સ્વભાવથી જોવામાં આવે, સ્વરૂપથી જોવામાં આવે તો આત્મા જિન સ્વરૂપ જ છે. એટલે જિનેન્દ્ર ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે અને આ આત્માને એટલે મારું જે સ્વરૂપ છે એ બંનેમાં કાંઈ તફાવત નથી, બંને એક જેવા છે. દેખો એ વાત બનારસી દાસજીને કહી હતી કે જિન પ્રતિમા જિન સારખી, એને ઉન્હોને ક્યાં બતાયા હૈ કે જો જિનેન્દ્ર ભગવાન કી જો પ્રતિમા હોતી હૈ, પ્રતિમા યાને જો હમ મંદિર મેં મૂર્તિ રખતે હૈ, વો જિન પ્રતિમા હૈ જિન સારખી, યાને જિનેન્દ્ર ભગવાન સાક્ષાત જો સમોસરણ મેં બિરાજમાન હૈ, વૈસી વહ જિનેન્દ્ર પ્રતિમા રહેતી હૈ હોતી હૈ, ક્યુંકે ઉસમે હમને 5 પ્રાણો કી સ્થાપના કી હૈ ના, હમ યે કરતે ના, ક્યા બોલતે આપ લોગ, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નહીં બોલના ઉનકો, પંચકલ્યાણક કરતે ના, તો પંચકલ્યાણક કે દ્વારા ઉસ મૂર્તિ મેં હમ સ્થાપના કરતે હૈ કે સાક્ષાત વહ ભગવાન હી હૈ, ખ્યાલ મેં, યાને જો સમોશરણ મેં ભગવાન બેઠે હૈ ક્યા તો કૈસે હોંગે, વૈસી યે પ્રતિમા હૈ, તો ઇસલિયે હમે તો ઇસ પર સે એસા હી બોધ લેના ચાહિયે કે જો પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિ હોતી હૈ, પ્રતિષ્ઠિત યાને યે પ્રતિષ્ઠા જો કી જાતી ના પંચકલ્યાણક મેં, એસી હી મૂર્તિ કો નમસ્કાર કરને યોગ્ય હૈ. એક વાત, કહી ખંડિત આદિ જો મૂર્તિ હોતી હૈ ઉસકો ભી નમસ્કાર કરને યોગ્ય નહીં હૈ, ક્યુંકે સમોશરણ મેં જો મૂર્તિ હોગી વો ક્યા ખંડિત રૂપ મેં હોગી ક્યા? લેકિન કઈ ભોલે જીવ એસે હોતે હૈ કે ખંડિત મૂર્તિ કો ભી સાક્ષાત જાકે નમસ્કાર કરતે હૈ. तो वह तो उसका ज्ञान का द्योतक है, बहुत सारी बातें उसमें। तो यहां जो कह रहे हैं क्या कि जिनने नमीने क्या कहां से निकला ये वस्तु स्वरूपे तो आत्मा जिन स्वरूप जिन छे। तो यह तो ये कह रहे हैं कि ये बात तो ऐसा है कि जो आत्मा है मेरा स्वयं का या किसी का भी, वह भी स्वरूप से तो जिन स्वरूप ही जिन छे। अने पर्यायमा जेमने राग द्वेष मोह रहित परम वितराग दशा जिन दशा प्रकृति छे तेमने नमीने आम कहीने आचार्य देवे शास्त्रनी आदिमा असाधारण मांगलिक करियूं छे। आपने पण आ शास्त्र पौष सुधी एकम थी सुदना दिवसे शुरू थयू छे ने, एटले के अंधारा गया ने अजवाड़ा थया, यानी अंधेरा गया और प्रकाश शुरू हुआ। आहा जुओ ने कुदरत नो पण केवो मेळ ने केवो संकेत तेने करे कौन। तो हम भी क्या करने लगे, अरे ऐसा मेल बिठाना चाहिए, आज कौन सा दिन है, अरे आज षष्टमी अष्टमी है, नहीं 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 नहीं, हम कौन सा प्रतिपदा तक रुकेंगे, पहले दिन तक, फिर हम घर में प्रवेश करेंगे। तो क्या करे कौन, आ तो सहज हो छे। तो ऐसा नहीं समझना कि गुरुदेव भी ऐसा कोई पोपड़म में विश्वास करते थे, ये तो ऐसा सहज हो गया ऐसा बताए। तो हम उससे ऐसा क्या करते कि नहीं हमको घर लेना है, तो अरे हमने तो यहां तक सुना है कि वो कोई स्त्री हो और उसके पेट में बच्चा आया हो तो हॉस्पिटल में जाके वहां नंबर लगाते हैं कि भाई हमारा नाम रजिस्टर करने का है, तो वो भी मुहूर्त पे करते हैं रजिस्ट्रेशन। तो जब हम हमारे बेटी को ले गए थे, उज्ज्वला ले गए थे, तो उसको पूछा कि भाई आपने मुहूर्त देख के आए क्या, बोले काहे का मुहूर्त, नहीं इधर नहीं, यहाँ ऐसे लोग आते हैं कि वो फला दिन में फला टाइम में हम आके नाम नोंद क्या बोलेंगे रजिस्टर करेंगे, तो कुछ ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब पागलपन है ख्याल में है सर। हमने तो बहुत बार बताया आपको कि कोई ऐसा घर के बाहर काम के लिए निकलता है तो डाबे बाजू के नाक का श्वास चालू है क्या, उजवे बाजू का चालू है, राइट साइड का, अरे दाहिने हाथ बाहर पहला रखना क्या, डाबा हाथ पहला रखना, ये भी सारा ऐसा कंट्राट होता है सबके पास, क्या मालूम इससे क्या मिलता है भगवान जाने। ऐसे पागलपन बहुत लोगों के पास है। तो यहाँ गुरुदेव ने जो बात बताई वो तो सहज रूप से जो बनी है घटी है। वैसे तो हम तो चाहते थे कि हम जाने के पहले दोनों शास्त्र पहले के पुराने खत्म कर दें, कौन से पंचाध्यायी और द्रव्य संग्रह, हुआ नहीं, आने के बाद हुआ, उसमें क्या है, जब होगा सो होगा। हा? देखो हवे नत्वा इत्यादि पदों नु तात्पर्य कहेवामां आवे छे, टीका नु नाम तात्पर्य वृत्ति छे ने, माटे दरेक शब्द नु तात्पर्य कहेवामां आवे छे, तात्पर्य एटले तेनो सार। ये संस्कृत में, संस्कृत मूल मैंने अंदर कर दिया, वो जो हमारे पास किताब दी है ना जो शॉर्ट है अभी आजकल अपने पास कम है, वो नियमसार किताब कम जो अपने पास है, हाँ उसमें ये संस्कृत जो श्लोक यहाँ जो है ना बेन, वो तो हमने प्राकृत में पढ़ा था अभी, ये देखो यहाँ पर भी है वो शब्द नमी उण वो नत्वा, हाँ पहला जिननी व्याख्या करे छे, अनेक जन्म रूप अटवीने प्राप्त करावाना हेतुभूत, आहाहा जे निज स्वरूप मा नथी एवी अनेक जन्म रूप अटवीने अर्थात 84 ना अवतारो देह रूप महावन ने अभी क्यों महावन निबिड़ अरण्य महावन ने प्राप्त करावाना निमित्तभूत एवा समस्त महाराग द्वेषादिक ने जे समस्त मोह राग द्वेषादिक ने जे जीते छे તે જીન છે. શું કીધું? ભગવાન આત્મા અંદર જીન સ્વરૂપ જ છે. આહાહા, જેને આવા જીન સ્વરૂપ ભગવાન આત્માનો આશ્રય લઈને ભવના કારણભૂત એવા મોહરાગ દ્વેષને સંપૂર્ણતાએ જીત્યા છે તે જીન, તેને જીન કહે છે. લ્યો, આ જીનની વ્યાખ્યા. બાપુ, જીન એ કોઈ સંપ્રદાયની ચીજ નથી, એ તો વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. દેખો, જો જીનેન્દ્ર ભગવાન હૈ વે ભી કોઈ સંપ્રદાય કે એસા નહીં કહે રહે, એ તો જૈસા વસ્તુ કા સ્વરૂપ હૈ વો બાત હૈ એસા કહે રહે. વસ્તુની સ્થિતિ છે સમજાણું કાંઈ. આહા, ભગવાન આત્મા શક્તિ રૂપે સત્વ રૂપે સ્વભાવે જીન સ્વરૂપ જ છે. યાને શક્તિ ભી ઉનકી જીન સ્વરૂપ હી હૈ, સત્વ જો યાને સત્તા જો હૈ ઉનમે વો ભી વૈસી હૈ ઓર સ્વભાવ ભી વૈસા હૈ. કૈસા હૈ? જીન સ્વરૂપ. જો તે જીન સ્વરૂપ ન હોય તો જીન પર્યાય પ્રકટ ક્યાંથી થાય? તેથી નિજ સ્વભાવનું શરણ લઈને જેને સમસ્ત મોહ રાગ દ્વેષને જીત્યા છે તે જીન છે. અને એવા જીનને વીર કહીએ. જીન છે તે વીર છે. હવે વીરની વ્યાખ્યા કરે છે. વીર એટલે વિક્રાંત, પરાક્રમી. ભગવાન વીર, વિક્રાંત, પરાક્રમી છે. શામાં પરાક્રમી છે? કે મોહરાગ દ્વેષને જીતવામાં, પોતાના સ્વભાવનો આશ્રય લઈને મોહરાગ દ્વેષને જીતવામાં તેવો અતુલ પરાક્રમી છે. અતુલ એટલે અતુલનીય. એ ઉસકે કિસી, હા જી, હા, ઉસકી કિસી કે સાથ તુલના નહીં હો સકતી હૈ, ઉસકો અતુલ કહેતે હૈ. વીર એટલે વીરતા ફોરવે. આહાહા, આ વીરની વિશેષ વ્યાખ્યા કરી કે જે વીરની સ્ફૂર્ણા કરીને અનંત ગુણને રચે અને રાગાદીને જીતે તે વીર છે. વીર એટલે શૌર્ય ફોરવે. શું કીધું? શૌર્ય એટલે શૂરવીરતા ફોરવે તે વીર છે. ફરીને વિશેષ કહે છે, વીર એટલે વિક્રમ, પરાક્રમ ફોરવે. પેલા વિક્રમ રાજા થઈ ગયા છે, થઈ ગયા ને, એમ આ આત્મા રાજા વિક્રમ છે એમ કહે છે. પરાક્રમ ફોરવે તે વિક્રમ છે એટલે કે અનંત ગુણ સ્વરૂપ નિજ આત્માની સન્મુખ થઈને અનંત વીરની સ્ફૂર્ણા કરે તે વિક્રમ છે. એને આ પુરુષાર્થ અને વીરગુણ કી વિશેષતા બતાઈ હૈ. ક્યાં કહા ફિર સે? અનંત ગુણ સ્વરૂપ નિજ આત્માની સન્મુખ થઈને, આ પોતાનો જે અનંત ગુણ સ્વરૂપ એવો જે આત્મા છે એના સન્મુખ થવું એ વીર્યગુણનું કાર્ય છે. એટલે પર્યાયમાં સ્વરૂપની રચના કરવી એમ તમે કહો. બીજી ભાષામાં તે કહે છે કે અનંત વીર્યની સ્ફૂર્ણા કરે તે વિક્રમ છે. આ વિક્રમ છે તે વીર છે એમ કહે છે. નિશ્ચયથી તો ભગવાન આત્મા વીર વિક્રમાદિત્ય છે. હવે કહે છે, કર્મશત્રુઓ પર વિજય મેળવે તે વીર છે. આ પ્રમાણે આટલા બધા વીરના અર્થ કર્યા. વીર એટલે વિક્રાંત, પરાક્રમી. વીરતા ફોરવે, શૌર્ય ફોરવે. વિક્રમ એટલે પરાક્રમ ફોરવે. કર્મશત્રુઓ પર જય મેળવે તે વીર છે. બીજે આજે બીજે આવે છે ને કે વિશેષે પ્રેરે તે વીર. એટલે પોતાના વીરને વિશેષે પ્રેરે, સ્વભાવ સન્મુખ કરે તે વીર છે. એવા વીરને કે જો જે શ્રી વર્ધમાન એક નામ વીર છે અને તેમનું વર્ધમાન પણ નામ છે. તેઓ ધર્મમાં વૃદ્ધિ પામ્યા છે માટે વર્ધમાન છે. શ્રી સન્મતિનાથ આવું પણ નામ છે. તેઓએ દીક્ષા લીધી ન હતી અને બાળક અવસ્થામાં હતા ત્યારે દિગંબર ભાવલિંગી સંત મુનિએ તેમને એટલે તેમના શરીરને જ હો જ્યાં દેખ્યા ત્યાં જ તે મુનિને જે સંશય હતો તેમનું સમાધાન થઈ ગયું એટલે તેમને સન્મતિનાથ સન્મતિ આપનારા કહેવામાં આવે છે. શ્રી અતિવીર મહાપરાક્રમ કર્યા છે માટે અતિવીર કહેવાયા. કથામાં આવે છે ને કે દેવ પરીક્ષા લેવા આવે છે ત્યારે પોતે નાગ ઉપર ચડી જાય છે અને તેથી શ્રી મહાવીર કહેવાયા. આમ ભગવાન શ્રી મહાવીરના 5 નામ હતા, વીર, વર્ધમાન, સન્મતિનાથ, અતિવીર અને મહાવીર. યે તો સબકો યાદ હૈ, ઉસમે ક્યા બતાના હૈ. અભી યહાં ઉન્હોને એક નામ કૈસે ઉનકે સાર્થક હૈ, કૈસે બને હૈ, ઉસકા ભી ઇન શોર્ટ સારા વિશ્લેષણ દિયા હૈ. આહાહા, ભગવાન મહાવીર જે એ નામોથી યુક્ત છે અને જે પરમેશ્વર છે આ વીરની વિશેષતા છે, તથા મહાદેવાદિદેવ છે અર્થાત મહાદેવના પણ દેવ છે. એટલે શું? સ્વર્ગના દેવોના પ્રધાન દેવ ગણધર છે અને તેમના દેવ પણ ભગવાન છે, માટે મહાદેવાદિદેવ છે. વળી છેલ્લા તીર્થના છે એટલે કે તીર્થના રક્ષણ કરનારા છે. અને જે અપ્રાપ્ત છે તેને મેળવી આપે. ભગવાન મહાવીર પ્રાપ્ત ધર્મની એટલે તીર્થની રક્ષા કરનારા છે અને અપ્રાપ્તને મેળવી આપનારા છે, માટે તેઓ તીર્થના છે. આહાહા, આ નિમિત્તથી વાત છે. હો, પ્રવચન સારમાં 1-5 ગાથામાં પણ આવે છે કે જેમનું ભગવાન મહાવીરનું નામ ગ્રહણ એટલે સ્મરણ પણ સારું છે, હિતકર છે. હવે દેખો કિતની મતલબ સહજ બાત હૈ કે હમને પ્રવચન સાર ઓર નિયમ સાર દોનો સાથ મે ચાલુ કિયા, એક દૂસરે સે લગતી હુઈ બાત હૈ. મુહૂર્ત નહીં નિકાલા થા ભાઈ, યે તો સહજ એસી બાત બની. પ્રશ્ન, એક બાજુ એમ કહો છો કે બીજાનું નામ લેતા વિકલ્પ ઉઠે છે અને આ એટલે સામ કહ્યું ને નામ ગ્રહણ સ્મરણ એ હિતકર છે. સમાધાન, સાંભળને બાપુ, વિકલ્પ તો વિકલ્પ છે પણ ભગવાનના નામ સ્મરણની પાછળ જે જ્ઞાન થયું છે તેની વિશેષતા છે. હવે અનંત વર્ણાણ દંશણ સહાવમ ની વ્યાખ્યા કરે છે કે જે ત્રણ ભુવનના ઉર્ધ્વ મધ્ય અને અધોલોકના સચરાચર ચાલતાને સ્થિર એવા દ્રવ્યગુણ પર્યાયથી કહેવામાં આવતા જોયું. પહેલેથી જ ત્રણ દ્રવ્યગુણ પર્યાય શબ્દ આવ્યા, મતલબ વસ્તુ, એનો ભાવ એટલે ગુણ અને એની દશા એટલે પર્યાય, એ ત્રણેથી કહેવામાં આવતા સમયને એટલે સમસ્ત દ્રવ્યોને જાણવા દેખવામાં સમર્થ એવા સકળ વિમળ એટલે સર્વથા નિર્મળ કેવળ જ્ઞાન દર્શનથી સંયુક્ત છે. શું કીધું? ત્રણ લોકના બધા સચરાચર દ્રવ્યગુણ પર્યાયોને જાણવા દેખવામાં સમર્થ એવા સકળ વિમળ કેવળ જ્ઞાન દર્શનથી ભગવાન સહિત છે. એ તો અમને સર્વજ્ઞ કા સ્વરૂપ તો બહુ બાર દેખા હૈ, કે વો કૈસે અનંત દ્રવ્યો કે અનંત ગુણો કે અનંત પર્યાયો કો જાણતે હૈ. યહી બાત ઉન્હોને શોર્ટ મે બતા દી હૈ. આહાહા, ભગવાન ત્રણ કાળ ત્રણ લોકના સમસ્ત દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયોને એક સમયમાં જાણવા દેખવાના સામર્થ્યથી સહિત છે તેને પ્રણમીને હું કહું છું. આહાહા, કુંદ કુંદ આચાર્ય કહે છે, આવા ભગવાનને પ્રણમીને નમીને વંદન કરીને હું કહું છું. શું કહું છું? નિયમસાર કહું છું. આહા, આવા દેવાદિ દેવ ત્રણ લોકના નાથ सर्वज्ञ परमात्मा ने हूँ प्रणमी ने आ नियमसार कहूँ छू, जो समय सार मां पहली गाथा मां एम लीधु छे के अनंता सिद्धो ने हूँ मारा ज्ञान मां स्थापु छू अने ए वंदित्तु नाम वंदन छे, अर्थात मारा ज्ञान मां अनंता सिद्धो ने आदर करू छू ए तेमनु वंदन छे। त्या श्रोता ने पन कहू छे के हूँ मारा ने तमारा आत्मा मां एटले ज्ञान मां अनंता सिद्धो ने स्थापु छू अने तमे पन तमारा ध्यान मां अनंता सिद्धो ने स्थापो। अहो शू दिगंबर संतोनी शैली, देखो ये बारंबार दिगंबर संतों का उन्होंने ऐसा वर्णन किया है और उनके प्रति इनके मन में ऐसे बड़े पैमाने पे अहोभाव है कि उसका कोई पार नहीं। हवे आई कहे छे नियम शब्द प्रथम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र माटे छे। आ कोई लोको पूछे छे ने के तमारे काई नियम छे, तेने आई कहे छे पर्याय मां शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करवू ते नियम छे। आ नियम अपना मां बधावना छे ने, नहीं शू कहे छे? हा पर्याय मां शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करवू ते नियम छे। आ नियम लेवा जेवो छे, अपने प्रेरणा आप्यो। आ हा हा पूर्णानंद नो नाथ भगवान आत्मा छे, तेने नियम मां लेवो अर्थात तेने श्रद्धान मां लेवो ज्ञान मां लेवो अने आचरण मां लेवो ए नियम छे, आ धर्म छे ने आ मार्ग छे। हवे सार पद नो अर्थ कहे छे नियम सार, नियम नो सार एम कहता शुद्ध रत्नत्रय नो स्वरूप कहू छे। आहा हा भगवान आत्मा के जे पूर्णानंद घन स्वरूपे अस्ति छे सत्ता छे तेनी अंतर्मुख थईने प्रतीति करवी तेनु अंतर्मुखाकार स्वसंवेदन पूर्वक ज्ञान करवू अने तेमाज स्थिरता लीनता रूप आचरण करवू ते नियम छे। ये जो नियम है वो नियम की मतलब जो यथार्थ नियम जिसको कहेंगे या निश्चय से नियम जिसको कहेंगे उसका यहां उन्होंने कथन किया है कि अपन आत्मा का मतलब स्वयं का अनुभव करना यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की प्राप्ति यही नियम है और यही नियम सार है। सार शब्द का अर्थ अलग बता रहे नहीं ते हो गया ते नियम ने सार केम कहो केम के आई शुद्ध रत्नत्रय नु स्वरूप केवू छे। आहा हा नियम एटले रत्नत्रय अने सार पद जोड़ता शुद्ध रत्नत्रय एमा व्यवहार रत्नत्रय समाय नहीं अर्थात एमा व्यवहार रत्नत्रय नो निषेध छे एम केवू छे समझाणु काय? क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय जो है वह तो राग सहित वाला है और राग यह जीव का स्वभाव है नहीं, इसलिए वह व्यवहार रत्नत्रय के जो परिणाम है उसको भी ये शुद्ध रत्नत्रय में दाखिल मतलब उसको एडमिट नहीं किया, उसको अलग रखा है, उसमें समावेश नहीं किया उसका। जरा प्रश्न पूछूं क्या? क्योंकि बहुत पढ़ पढ़ कर थोड़ा सा ऐसा हेवी हो गया ना। जो अभी हम निश्चय सम्यक दर्शन जिसको कहते हैं तो निश्चय सम्यक दर्शन में हम द्रव्य गुण पर्याय लगाएंगे तो किस तरह से लगेगा कौन बता पाएगा? आप बताएगी? अच्छा बहुत अच्छा, आप भी बताएगी? बहुत अच्छा, इधर पीछे में आप बताएंगे? अच्छा प्रतिभा ताई आप बता पाएगी? मम्मी जी आप नहीं? क्या हो गया? चंद्रिका बेन तमें नहीं? अच्छा इंदु बेन बताएगी, पहले से हाथ उठाया उन्होंने। हाँ बहुत अच्छा, देखो उन्होंने ऐसा बताया निश्चय सम्यक दर्शन में जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की स्वभाव पर्याय, ये बात आ गई। अब उसमें और भी दो बात शामिल है, उसको भी बता देना। हाँ, सम्यक पर्याय, इन्होंने कहा कि सम्यक ज्ञान में जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की सम्यक पर्याय भी आ गई। और क्या रह गया? सम्यक चारित्र में कौन कौन आया? जीव द्रव्य के चारित्र गुण की स्वभाव पर्याय, हेतली मालूम है ना तुम्हें। हाँ, अब अगला प्रश्न ये है कि व्यवहार सम्यक दर्शन जो है वो उसमें द्रव्य गुण पर्याय लगा है, कौन लगावेगा? अच्छा, वसंत जी भाई? नहीं, देवेंद्र भाई? अपना प्रश्न क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन, यह इसमें द्रव्य गुण पर्याय लगा है। हाँ, तो इसमें द्रव्य कौन सा, गुण कौन सा और पर्याय कौन से, हमें तो उसमें उत्तर चाहिए। और पर्याय कौन सी? अनुभव, अनुभव। नलिन भाई आप बता पाएंगे? हाँ बोलो बहन, एक मिनट एक मिनट। भूपेन भाई आप जानते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन? हाँ, जया बहन को अपना क्या नाम है, लता बहन? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, जया बहन आप बोलना। हाँ, और जिसको निश्चय सम्यक दर्शन होता है ना बहन, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन भी होता ही है। तो सम्यक भी होवे और विभाव भी होवे, या ऐसा नहीं होगा, विपरीत दोनों एक साथ नहीं होंगे, ख्याल में है ना? हाँ, ना डॉक्टर साहब? हाँ, ख्याल में है? हाँ, जिसको हमने सराग चारित्र कहा ना भाई साहब, कि जीव द्रव्य के चारित्र गुण की विभाव पर्याय, क्योंकि सच्चे देवगुरु शास्त्र कहो उनके प्रति जो इस जीव के राग मिश्रित ऐसा जो श्रद्धान है, ऐसा जो ज्ञान है, ख्याल में आया, वह तो चारित्र गुण की विभाव पर्याय है। और उसमें देवगुरु शास्त्र की तो बात आई, सात तत्वों का भेद रूप श्रद्धान कहो ज्ञान कहो, वह भी सराग साथ राग साथ है, इसलिए उसको चारित्र गुण की विभाव पर्याय कहेंगे। देखो, हमको सम्यक दर्शन, क्या निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, इसका ही कुछ पता नहीं होगा तो कैसा चलेगा? और आएगी ये बात इसमें, या तो समय सार में तो हजारों बार आई है, क्या बात, ये तो गुरुदेव के प्रवचन है ना, उसमें भी आएंगी। जैसा वो कह रहे कि मैं मेरी बात नहीं कहूंगा, केवली और श्रुत केवली द्वारा कही गई बात ही बताऊंगा, वैसे मैं भी यहां गुरुदेव ने जो बात बताई वही कहूंगा, ख्याल में। तो देखो भाई, व्यवहार सम्यक दर्शन जब कहते हैं तो वहां तो जीव के देवगुरु शास्त्र के प्रति जो राग भाव वर्त रहा है उसका द्योतक है वो। राग नहीं होगा तो अंतरंग में लीनता होगी तो तीनों स्वभाव हो गए। चलो देखो अभी क्या कहते हैं, कहां आए थे? अच्छा, भगवान आत्मा, बरोबर वही ना, आहा, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद नो नाथ प्रभु एक ज्ञानानंद चिदानंद स्वभाव छे, आहा, तेना आश्रय एटले स्वाश्रय प्रकट जे स्वरूपना श्रद्धान ज्ञान चारित्र ते शुद्ध रत्नत्रय छे, अने तेनीज अहीं वात केवी छे, राग रहित मल रहित निर्मल शुद्ध रत्न त्रयना स्वरूप ने जाय केमू छे, भले व्यवहार अंदर समावशे भले व्यवहार अंदर समझावशे पण वस्तु जे केवी छे ते आ एटले शुद्ध रत्नत्रय छे। आहा हा भेद पाडीने समझावशे पण समजावामा छे समजाववा छे त्रिकाळ शुद्ध चिन्मात्र वस्तुना श्रद्धा ज्ञान रमणता रूप शुद्ध रत्नत्रय ल्यो आ वास्तविक मोक्षनो मार्ग छे। अरे आवा मार्ग ने समझा विना जीवो बिचारा संसारना दुखमा आकुलतामा शेकाई रह्या छे ने नहीं समझे। देखो ये जो राग है ना राग वो कैसा है आग स्वरूप है। देखिए हमने जो छेड़ाला पढ़ा था ना राग आग दहे सदा तो ये राग जो है पुण्य पाप के जो परिणाम है उससे यह जीव दाजी जाय छे। अभी समझ में आए तो शेकाय छे क्या बोले आकुलतामा शेकाई रहा छे यानी उससे वो बहुत आकुलित है उससे ताप से वो तप्त हो गए हैं। प्रश्न हाँ पण पुण्यना योगे धन पैसा होय ने पुत्र परिवार बराबर होय ये तो सुखी छे ने। वसंत जी भाई अपना कोई दोस्त उधर गया लगता है उनके पार्टी में हाँ क्या कहते देखो अपना हमेशा यही प्रश्न है ना कि हमको यही तो तकलीफ है क्या बोल रहे हैं भाई आप कहते तो ठीक है पण आ गया ना बीच में पुण्यना योगे धन पैसा होय ने पुत्र परिवार बराबर होय ये तो सुखी छे ने। कौन वो वैसा आदमी जिसके पास ये सारा मौजूद है क्या कहते अरे भाई तने एना एटले पुण्यना योग ऊपर लक्ष्य जाय छे ए एकली आकुलता ज छे प्रभु। अरे आई तो एम कहे छे के देवगुरु शास्त्र ऊपर लक्ष्य जाय तो ते पन आकुलता छे है ना। यह राग आया ना देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारा ध्यान जाता है वह भी राग है तो ये पन आकुलता छे एम के छे तो तेनी आई वात करवी नथी ए व्यवहारनी वात आई केवी नथी छता मुमुक्षुनी भूमिका मा देवगुरु शास्त्र देवशास्त्र गुरुनी भक्ति होय छे तो भक्ति छे ते वितराग भक्ति हे कि सराग भक्ति हे ख्याल में है ना। हाँ आहा हा अतीन्द्रिय आनंदनो नाथ ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा अंदर बिराजे छे अने तेना आश्रय अनाकुल निराकुल अतीन्द्रिय आनंद जे प्रकटे छे तेने आई शुद्ध रत्नत्रय कहे छे अने ए मोक्षनो मार्ग छे। देखो क्या कह रहे हैं थोड़ा सा इसमें हम समझना चाहते हैं तो लोग थोड़ी सी इसमें मिसगाइड हो जाते हैं। कैसा अभी गुरुदेव ने क्या बताया अतीन्द्रिय आनंदनो नाथ ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा अंदर विराजे छे तो इसका अर्थ लोग क्या लेते मैं उससे कोई भिन्न हूं और मुझको उसमें प्रवेश करना है ख्याल में आए वास्तव में ऐसा नहीं है। ये जो तेरे राग द्वेष के जो परिणाम चल रहे हैं उसको जरा सा हटा दे तो अंदर ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा वहां विराजमान है यानी हमारी नजर तो ऊपर ऊपर ही तैर रही मतलब ऊपर ऊपर के भाग में जा रही है तो ऐसा नहीं है कि एक बाजू इधर ऐसा भगवान आत्मा बैठा है पूर्णानंद सुख स्वरूप और उसके अंदर मुझको जाना है यानी मैं कोई जुदा ही हूं और वो आत्मा में मुझे प्रवेश करना है ऐसा है नहीं। लेकिन समझावे कैसा कि तू जो उपलक उपलक बातों में जो अटका पड़ा हुआ है शरीर रूपी मैं मान रहा है तो शरीर को छोड़कर उसके भीतर तो हमने क्या समझा कि शरीर के अंदर आत्मा गया है। अरे उसमें और उसमें अत्यंत अभाव है शरीर और जीव आत्मा में कौन सा अभाव है अत्यंत अभाव है तो एक दूसरे में कहां गए है भले एक क्षेत्र में उनका आपस में एक क्षेत्रावगाही संबंध कहो तो कहो लेकिन है तो अपने स्वचतुष्टय में। कल कोई बोल रहा था ना भारत कहां होते अपने स्वचतुष्टय में किसने उत्तर दिया था डॉली ने दिया था बरोबर है ये ऐसी बात है तो ऐसे ही अपने अपने सोच लेकिन वो एक क्षेत्र में है ऐसा कहते हैं तो यहां क्या कह रहे हैं कि देखो अतीन्द्रिय आनंदनो नाथ ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा अंदर विराजे छे हमारी जो नजर पर्याय पर्याय के ऊपर जो बैठी है उससे पर्याय से सारा हटकर वो पर्याय के पीछे ही ये त्रिकाली स्वरूप है। तो अंदर है यानी भाई आपने खाली नजर में वो लेना है, ऐसा कोई अंदर जाके प्रवेश करना है वैसा कुछ नहीं है। तेना आश्रय अनाकुल निराकुल अतीन्द्रिय आनंद आनंद जे प्रकटे छे तेने अहीं शुद्ध रत्नत्रय कहे छे अने ए मोक्षनो मार्ग छे। अरे पन मने पर विना चाले नहीं एम मानीने अज्ञानी राखो एटले भिकारो थईने फरे छे अने तेथी हूँ आवो महान ज्ञानानंद स्वरूपी आत्मा छूं एम एने पोतानी मोटा बेस्ती नथी। जैसा कहते हैं इतना बड़ा समुन्दर होगा और वो समुन्दर को हम केवल एक आंगली ऐसा आंखों के सामने रखते हैं या थोड़ा सा कपड़ा रखते हैं छोटा सा वस्त्र, तो सामने का इतना बड़ा पहाड़ होवे या समुन्दर होवे तो ओझल हो जाता है, हमारे आंखों में नहीं आता है। ऐसे इस जीव की अनादि से पर्याय पर ही जो नजर अटकी है, तो पर्याय को हटाएगा तो उसके पीछे, तो हमने क्या समझा कि अंदर आत्मा उसके ऊपर ऊपर पर्याय है उसको हटा दिया। अरे जहां द्रव्य है वहीं पर्याय है, द्रव्य कहीं अन्य जगह रहता और पर्याय कहीं दूसरी जगह रहता हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह जीव की अनादिकालीन ऐसी टेव हुई है कि वो प्राप्त पर्याय में ही अपनापन मानता है, उस पर्याय से नजर हटाकर यानी अपना जो जानना जानना पर्याय को जानना है उस जानने को छोड़कर स्वरूप को जान तो तू स्वरूप में अंदर प्रवेश कर लिया ऐसा समझ। ये केवल जानने का ही फर्क है क्योंकि आत्मा जानने के अलावा क्या करता है, कर ही नहीं सकता है। हम रोज बोलते हैं ना आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, खाली बोलने के लिए बोलते हैं, क्यों बिन मानने के लिए नहीं, अभी टाइम है वो तो थोड़ा दिन के बाद। अरे थोड़ा दिन जो रुकेगा वो कभी कायम रुकेगा, अब भी मानेगा तो बस रोकड़ा। क्या उधारी का धंधा जैनिज्म में नहीं है, कैश पेमेंट अच्छा आज करे सो अब ऐसा है और अब करे सो अभी तुरंत। आहा कहे छे नियम एटले रत्नत्रय अने सार एटले शुद्ध, एटले के शुद्ध रत्नत्रय ने आई नियम सार कहे छे। चारे देवगुरु शास्त्रनी भेद रूप श्रद्धा आदि रूप जे व्यवहार रत्नत्रय छे ते तो अशुद्ध रत्नत्रय छे, बाह्य रत्नत्रय छे, भेद रत्नत्रय छे अने एवा बीजा नाम द्रव्य संग्रह मां आवे छे। आहा हा आई तो मुनि भगवंत कहे छे अमे तो शुद्ध चिदानंद घन स्वरूप निज आत्माना जेमा दर्शन ज्ञान थाय साक्षात्कार थाय अने अनाकुल आनंद नो रस निभजे एवा शुद्ध रत्नत्रय शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र ने केवा मागीए छे। आहा हा आत्मा पोते सच्चिदानंद परमात्मा छे पन रागनी एकता आड़े अज्ञानी ने एना दर्शन थता नथी, एना दर्शन तो निज भगवान निज स्वभावना एकत्व बड़े थाय छे। ये अभी जो हमने बात की वही उन्होंने अच्छे शब्दों में कही है। क्या कहा कि नीचे से फोर्थ लाइन आत्मा आहा आत्मा पोते सच्चिदानंद परमात्मा छे पन रागनी एकता आड़े, राग यानी अभी तो पर्याय चल रहे हैं, पर्याय में राग किसके प्रति है, शरीर के प्रति है, स्त्री के प्रति है, पुत्रों के प्रति है, अपने परिजनों के प्रति है, सारे वैभव पे है, सब 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 ये क्या है, ये राग ना एकता आड़े अज्ञानी ने एना एटले आत्माना दर्शन थता नथी, एना दर्शन तो निज स्वभावना एकत्व वडे थाय छे। यानी मैं यही हूं ऐसा जब स्व के स्वभाव में एकत्व होगा, अपने स्वभाव की महत्ता आएगी तो ही उसको आत्मानुभव होगा। आहा शुद्ध स्वभाव नु एकत्व थे शुद्ध रत्नत्रय प्रकटे छे अने ते अभ्यंतर मोक्ष नो मार्ग छे। समझाणु काय पण आमा व्यवहार ना भेदो नु पण वर्णन छे, व्यवहार निमित्त छे ने, पण ए व्यवहार द्वारा समझावो तो छे अखंड अभेद एकाकार आत्मा। देखो व्यवहार भी जो है वह भी निश्चय को ही इंडिकेट करता है हमेशा, भेद रूप करके उसका अलग अलग विवेचन करके समझाता तो है निश्चय को, यानी यहां अखंड आत्मा को ही। तो क्या कहा, व्यवहार निमित्त छेने पन ए व्यवहार द्वारा समझाओ तो छे अखंड अभेद एकाकार आत्मा, व्यवहार विना समझाओ शी रीते, क्योंकि आत्मा कैसा है तो आत्मा आत्मा है। अरे पर आत्मा कैसा है, आत्मा आत्मा है तो उसको समझाना तो नहीं नहीं, जिसमें ज्ञान है दर्शन है चार तो ये भेद करके समझाए ना, हाँ उसको आत्मा कहते हैं। तो फिर भेद करके बताया तब उसको आत्मा समझ में आएगा। तो ये भेद करके कथन करना इसी को व्यवहार कथन कहते हैं। तो हम तो व्यवहार कहते हैं, बोले तो ऐसा समझे कि ये आत्मा आत्मा को बोलना निश्चय और बाकी कार्य करना जो क्रिया करना भाव करना वो सारा व्यवहार, वो व्यवहार निश्चय वो बात नहीं। यहां तो कथन पद्धति जो है वो नयात्मक जो बात है उसकी बात कह रहे हैं। हर जगह आचार्य तो कहेंगे ये व्यवहार नहीं से ऐसा कहा है, ये व्यवहार है बस ऐसा समझा दिया। क्योंकि बहुत बड़ा नाम होता है तो हम उसको शॉर्ट कर देते हैं ना, कौन सा नहीं बताओ, मिली कौन मिली ये नाम होता है मिलिंद्र और सब उसको मिली मिली करते हैं, काय को मिली ऐसा कोई भी बोल लेता है, ऐसा कुछ नहीं, वो शॉर्ट नाम है। हा? वैसा हर जगह है नाम होगा भाई भूपेंद्र, तो छोटपन में पूछो उनको वो ए भूपला ऐसा बोलते थे कि नहीं, तो छोटा नाम हो जाता है एकदम ऐसा सॉफ्ट। वैसा दिनेश होगा तो दिनू होता है, सुरेश होगा तो सूर्या होता है, कुछ भी होता है। ये तो शॉर्ट करने की पद्धति है, हर जगह है ऐसा ही नहीं है, हर कोई भी भाषा में कहो कोई भी लैंग्वेज में। तो यहाँ आचार्य भी कहते हैं व्यवहार छे, तो व्यवहार छे तो ये कोई ऐसा कन्वेंशन है ऐसा नहीं है, वो कोई लौकिक व्यवहार की बात नहीं कर रहे, ये तो व्यवहार नैनु कथन छे ऐसा। लता बेन साचा बोलना, आप जब यहां से देवलाली जाती है तो वहां पहले क्या बोलते, ए रिक्शा ऐसा बोलेगी कि नहीं, तो आता है रिक्शा वाला और हम बुलाते किसको, रिक्शा को, तो रोकना होता है रिक्शा, तो क्या रुके, रिक्शा वाला रुकेगा, चलो बहन बैठो, ये पद्धति है ना ऐसे। तो वैसे वहां पर भी, लेकिन हमें वो समझना चाहिए ये तो व्यवहार है, यानी भेद का कथन जब आता है तो वह तो व्यवहार ने का कथन है, क्यों आत्मा तो है अखंड अभेद अनंत गुणों का एक पिंड ऐसा है, फिर तो वो समझावे कैसा, तो भेद करके समझाए तो व्यवहार हो गया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, हाँ ये कहूँ ना यहाँ व्यवहार विना समझाओ शी रीते, तो ये अभी व्यवहार तो हम कल ही समझेंगे, 8:30 हो गए। अच्छा पन आमा व्यवहार ना भेदों नु वर्णन छे, उधर से चालू करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानो सी बखानी है, कहो द्रव्य जान वे को बंध विधि बान वे को अपर पिछान वे को करम प्रमाणी है, अनुभव बताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को जरूर आनी है, तहां तहां तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान तई सुझे लोकालो सो वाणी मस्त कणमो सदा देता हो। बोलो जिनवाणी माता की।